सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज मैं जो आपके लिए पुरानी कथा लेकर आई हूँ, जो आपको सुनाने जा रही हूँ, वो श्रीमद्भागवत पुराण से ली गई है। इसमें एक व्यक्ति थे धुंधकारी। तो यहाँ पर जो कहानी है वो है कि धुंधकारी प्रेत क्यों बन गया था, उस पर एक पौराणिक कथा है। बहुत कम ये लोगों ने सुनी होगी, तो इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी जीवन की सीख भी है आपके लिए। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से बड़ी क्रूर थी और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही साथ उसे संतान का सुख भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का सुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए एक दिन वो वन की तरफ चला। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, कहो विप्रवण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम अपने प्राण त्यागने जा रहे हो, तुम अपनी आत्मदाह करने जा रहे हो। आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है, मतलब कि उसके भी अभी तक कुछ भी संतान नहीं है, यानी कि बछड़ा या बच्चियाँ नहीं है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ ना ऋषिवर, उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर ऋषिवर कहते हैं कि हे विप्रवण, कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है, वासना को छोड़ दो और सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार किसी भी प्रयोजन से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे जीवन अपना चाहिए तो संतान भी अवश्य चाहिए, और अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो कृपया करके आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त होने का मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी अपने प्राण त्यागने को आमादा ही है और ये नहीं मानेगा, तो वह अपने झोली से फल निकाल कर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फल तुम लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र अवश्य होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी धुंधली मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मुझे गर्भ ठहर जाएगा और मुझसे खाया नहीं जाएगा, ना ही कुछ भी पिया जाएगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी और मेरा शरीर की जो सुंदरता है वो भी नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन उसे खाती नहीं। अब उन ऋषिवर ने कहा था ना कि तुम्हें किसी भी प्रकार और किसी भी प्रयोजन से संतान नहीं हो सकती, तो देखिए अभी आगे क्या होता है। तो एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। तो बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, अर्थात मैं गर्भवती हूँ, और प्रसव होने के बाद वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। जब तक तुम गर्भवती के समान घर में ऐसे ही नाटक करती रहो और मैं कह दूंगी अपने पति से कि मेरा बच्चा मर गया है, और तू ये जो फल हाथ में तूने लिया हुआ है ना, इसे गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। कहते हैं ना, विपरीत काले सिर्फ दुष्ट बुद्धि ही होती है। तो उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो उसने धुंधली को लाकर दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा ही आनंद हुआ। आत्मदेव को इस विषय में कोई जानकारी नहीं हुई कि इतने दिनों से उसकी पत्नी सिर्फ नाटक भर कर रही थी। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्यकार है, अर्थात गाय भी गर्भवती हो गई थी वो फल खाने के बाद, क्योंकि जो ऋषिवर थे उन्होंने जो फल के रूप में वरदान दिया था वो तो खाली नहीं जा सकता था। उसे देखकर जो आत्मदेव थे वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वह गाय का बच्चा बिल्कुल मनुष्य आकार का था, लेकिन बस उसके जो कान थे वही गाय के समान थे। हालांकि उसे बड़ा आनंद हुआ, वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं। जो पहला धुंधली का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा जाता है, और जो गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा जाता है। गोकर्ण बड़ा ही विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, क्योंकि धुंधकारी और जबकि जो धुंधकारी है वो दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर और व्यभिचारी निकलता है। अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति को व्यर्थ में ही नष्ट करता रहता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल देता है। जो धुंधकारी होता है वो अपने पिता आत्मदेव को घर से बाहर कर देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था, अर्थात वो जो मुझे ऋषिवर मिले थे उन्होंने मुझे सही कहा था कि तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है, तो इससे तो मेरे कोई संतान ना होती वो ज़्यादा अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है और वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है। वह कहता है कि आप सभी को छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, और गो से उत्पन्न हुए गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी जो पत्नी है धुंधली को, जो धुंधकार होता है वो उसे भी सताने लगता है, तो वह भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। यानी उसने शुरू से बुरी सोच रखी, अगर वो फल खाती तो वो जो सुविचार रखने वाला और जो बुद्धिमान पुत्र था गोकर्ण वो उसी की कोख से उत्पन्न होता जो कि गाय की कोख से हुआ। तब धुंधकारी जब बड़ा होता है तो उसके बाद वो और 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती हैं, अर्थात अपने तरीके से उससे काम कराती हैं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए धन जुटाने लगता है, वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है, और बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। तो यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत योनि में चला जाता है, और प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी उसका शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं, और अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? तब धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती भाई, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ और इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ। तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ भाई। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया था, जब मुझे पता चला कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, फिर भी तुम प्रेतियोनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। मैं कुछ और उपाय करता हूँ, क्योंकि वह तो एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति था। अपने भाई के इतने कुकर्म करने के बाद भी वो उसके सद्गति चाहता था। तो कई उपाय करने के बाद भी जो गोकर्ण ने किए कुछ नहीं होता, तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहने लगते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही इसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह परायण करो, अर्थात एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करो। तब गोकर्ण ने व्यास नदी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत से लोग कथा सुनने आने लगे, इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए सात गांठ के बांस पर पड़ी। एक बांस पड़ा हुआ था जिस पर सात गांठें लगी हुई थी और वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार सात दिनों में सात गांठें फटती चली गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी जो बैकुंठवासी पार्षद थे, अर्थात जो विष्णु के जो पार्षद होते हैं, जो दूत होते हैं, उनके सहित एक विमान धरती पर उतरा और सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए तुम? सिर्फ इस धुंधकारी के लिए ही ये विमान क्यों आया? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों किया ईश्वर ने? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल का भेद का कारण है इनमें श्रवण का भेद। श्रवण सबसे सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया, अर्थात इसके जैसा चिंतन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया, चिंतन भी करता रहा। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले जाते हैं। अर्थात जब भी हम किसी कथा को श्रवण करें तो उसे अपने मन के अंदर भी धारण करें, अर्थात उसके अनुरूप व्यवहार भी करें। धुंधकारी अपने कर्मों से बहुत ज़्यादा दुखी था, इसीलिए वो उस योनि में था, तो वो इन्हीं सब कर्मों का पश्चाताप भी कर रहा था, इसलिए उसका उद्धार हुआ। श्रावण मास में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान का उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। गोलोक धाम जो बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ किसी भी मनुष्य की पहुँच नहीं होती, कई बार तो बहुत सिद्ध गुण पुरुष भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ये कहानी जो आपने सुनी, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, था इससे हमें सीख क्या मिली? अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यगामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। अब ना तो गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और ना ही सुनने वाले। वो तो उसका भाई था कि जिसने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार कर दिया। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेतियोनि में रहकर भी जो सजा भुगती वो और भी ज़्यादा भयानक थी। यानी जीवन रहते तो उसकी पत्नियों ने उसे किस तरह से अंगारों पर जलाकर मारा और इतने सालों तक जो उसने प्रेत योनि को झेला वो भी। बाद में उसे बहुत पछतावा भी हुआ, तो भागवत कथा सुनकर उसका मन निर्मल हो गया और निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे, उसका सारा दुख और जो व्यथा जो पीड़ा थी वो सब जाती रही और उसका उद्धार हो गया।